लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे आप्रवासियों, शरणार्थियों और युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि शिक्षा पाने के उनके अधिकार का सदैव सम्मान किया जाए, जो एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवार ये आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवार ये आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पापा पॉल षष्ठम के सभागार में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo oggi a contemplare Gesù nel mistero delle sue origini, raccontato dai Vangeli dell'infanzia. Se Luca ci permette di farlo nella prospettiva della madre.
Priye bhaiyo evam behno, suprabhat. आज हम यीशु के जन्म के रहस्य पर चिंतन करना जारी रखते हैं, जैसे हमारे लिए उनके बचपन को सुसमाचारों में वर्णन किया गया है। संत लूकस इसे माता के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं, जहां हम कुमारी मरियम को पाते हैं। वहीं संत मत्ती इसे योसेफ की निगाहों से वर्णन करते हैं, व्यक्ति जो संवैधानिक रूप से यीशु के पितृत्व को स्वीकारते, जिसे यीशु की टहनी से संयुक्त किया जाता और जो राजा दाऊद को की गई प्रतिज्ञा थी। संत पापा ने कहा कि वास्तव में यीशु इसराइल की आशा है जो पूरी होती है। वे राजा दाऊद को की गई प्रतिज्ञा के वंशज हैं, जो अपने निवास को सदा के लिए धन्य बनाते हैं। वे यीशु की टहनी से निकलने वाले एक धड़ हैं, एक धर्मी शाखा जो सच्चे राजा के रूप में विवेकपूर्ण ढंग से राज्य करेंगे। न्याय तथा धार्मिकता उसकी भूमि पर फलेगी फूलेगी। संत पापा ने कहा,
Giuseppe entra in scena nel Vangelo di Matteo come il fidanzato di Maria.
संत मत्ती के सुसमाचार में योसेफ का प्रवेश मरियम के मंगेतर स्वरूप होता है। इसराइलियों के लिए मंगेतर अपने में एक सच्चा नैतिक रूप में पूर्ण स्वीकार्य संबंध था, जो अपने को आने वाले एक साल के लिए तैयार करता, जिससे वह विवाह के संबंध में प्रवेश करे। इसके बाद नारी अपने पिता के घर से पति के लिए सौंपी जाती, जो पति के घर में आते हुए अपने को मातृत्व के उपहार हेतु स्वेच्छा से समर्पित करती थी। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि ठीक उस विशेष समय में योसेफ को मरियम के गर्भवती होने की खबर लगती है और उसके प्रेम की कड़ी परीक्षा होती है। ऐसी स्थिति में जो उसकी सगाई को खत्म करने का कारण बन सकती थी, कानून उसके लिए दो संभावित समाधानों को सुझाव स्वरूप प्रस्तुत करता है। या तो सार्वजनिक कानूनी कार्य, जिसमें वह नारी को अदालत में पेश कर सकता था, या निजी कार्रवाई, जैसे कि वह उसे अस्वीकृति पत्र दे सकता था।
Matteo definisce Giuseppe come un uomo giusto.
संत मत्ती योसेफ को धर्मी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं, एक व्यक्ति जो ईश्वर की संहिता के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, जो अपने जीवन के हर क्षण को प्रेरणा में जीता है। इस भांति ईश्वर के वचन का अनुसरण करते हुए योसेफ अपने विवेक में कार्य करता है। वह अपने को सहज भावनाओं और मरियम को अपने साथ रखने के डर से अभिभूत नहीं होने देता, बल्कि वह ईश्वरीय ज्ञान से अपने को निर्देशित होने देता है। वह चुपके से व्यक्तिगत रूप में मरियम से अलग होने की सोचता है। यह हमारे लिए योसेफ के विवेक को व्यक्त करता है, जिसके फलस्वरूप वह अपने में गलती नहीं करता है। वह अपने को ईश्वर से आने वाली आवाज के प्रति नम्रता में खुला रखता है। इस भांति संत पापा ने कहा, नाजरेत का योसेफ एक दूसरे योसेफ की छवि को हमारे लिए प्रस्तुत करता है, जो याकूब का पुत्र था, जिसे स्वप्नों का स्वामी कहा गया है। वह अपने पिता का अति प्रिय था, लेकिन उसके भाई उससे बहुत घृणा करते थे, जिसे प्रभु ने राजा फराउन के राज दरबार में स्थापित किया। संत पापा ने कहा,
के कोसा सोन्या जोसेफ दी नासर।
योसेफ के सपने में हम क्या देखते हैं? हम एक चमत्कार को देखते हैं, जिसे ईश्वर मरियम के जीवन में पूरा करते हैं। इसके साथ ही हम उनके जीवन में भी चमत्कार होता देखते हैं। वह एक पिता के रूप में रक्षक, सुरक्षा देने वाला तथा भौतिक और आध्यात्मिक विरासत को बांटता है। उसकी पत्नी के जो गर्भ हैं, वह ईश्वर की प्रतिज्ञा से हैं। एक प्रतिज्ञा जो अपने में सबों की मुक्ति को निश्चितता में वहन करती है। अपनी निंद्रा में योसेफ इन वचनों को सुनता है। योसेफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से ना डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ हैं वह पवित्र आत्मा से है। वह एक पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को पापों से मुक्त करेगा।
A questa rivelazione Giuseppe non chiede prove ulteriori. Si fida.
इस रहस्य के प्रकटीकरण के समय योसेफ कोई दूसरे सबूत की मांग नहीं करता है। वह ईश्वर पर विश्वास करता है। वह ईश्वर से मिले सपने पर और अपने मंगेतर होने पर विश्वास करता है। इस भांति वह उस कृपा में प्रवेश करता है, जहां व्यक्ति को इस बात का ज्ञान होता है कि दिव्य प्रतिज्ञा को विश्वास, आशा और प्रेम में किस तरह जीने की जरूरत है। योसेफ इन सारी घटनाओं में कुछ भी नहीं कहता है, बल्कि वह विश्वास, आशा और प्रेम करता है। वह अपने को व्यर्थ की बातों में प्रकट नहीं करता है, लेकिन वह ठोस कार्यों को करता है। वह उस पीढ़ी में गिनती किया जाता जिसे प्रेरित संत याकूब शब्दों को कार्यान्वित करने वाले कहते हैं। वे उसे कार्य, शरीर और जीवन में पूर्ण समाहित करते हैं। योसेफ ईश्वर पर विश्वास करते हुए आज्ञा पालन करता है। ईश्वर के आंतरिक रूप में खुला रहना उसे स्वतः ही आज्ञा पालन हेतु अग्रसर करता है। प्रिय बहनों और भाइयों, संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि हम भी अपने लिए ईश्वर से बोलने से अधिक सुनने की कृपा मांगें, ईश्वर के सपने को देख सकने की कृपा, जिससे हम उत्तरदायी रूप में ख्रिस्त का स्वागत कर सकें, जो हमारे बपतिस्मा के समय से हमारे संग रहते और हमें विकसित करते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने सबों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ किया और सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Dominus vobiscum. Signum Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in
saeterno nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritus Sanctus.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के गोमा शहर के निवासियों के लिए प्रार्थना की। विद्रोहियों ने रवांडा की सीमा पर लगे पूर्वी शहर गोमा पर कब्जा कर लिया है। मैं शांति और सुरक्षा की शीघ्र बहाली के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं स्थानीय अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से शांतिपूर्ण तरीकों से संघर्ष को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान करता हूँ। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार को अपने साप्ताहिक आम दर्शन समारोह के दौरान यह अपील की। उन्होंने कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में बिगड़ती स्थिति के लिए अपनी चिंता व्यक्त की। सभी पक्षों से शत्रुता को समाप्त करने, गोमा और आसपास के क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। संत पापा ने मंगलवार को राजधानी की शांसा में हुए दंगों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जब प्रदर्शनकारियों ने उन देशों के दूतावासों पर धावा बोल दिया जिनके बारे में उनका कहना है कि वे उत्तरी किवू प्रांत में संघर्ष में शामिल हैं। उन्होंने कहा, मैं राजधानी की शांसा में हो रही घटनाओं पर भी आशंका के साथ नजर रख रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि लोगों और उनकी संपत्ति के खिलाफ सभी तरह की हिंसा बंद हो जाएगी। DRC में समाधान की तात्कालिक आवश्यकता हमें विश्व के अन्य युद्ध क्षेत्रों को भूलने नहीं देती। प्रत्येक बुधवार की तरह आज भी संत पापा फ्रांसिस ने विश्वासियों को उन देशों में शांति के लिए प्रार्थना जारी रखने हेतु आमंत्रित किया जहां तनाव और क्रूरता कम नहीं हो रही है। फिलिस्तीन, इसराइल, म्यांमार और कई देश जो युद्धरत हैं, युद्ध सदैव पराजय है। आइए शांति के लिए प्रार्थना करें। आज की भयावहता से लेकर कल की भयावहता तक संत पापा ने आम दर्शन के लिए आए पोलैंड के श्रद्धालुओं से शांति हेतु प्रार्थना का अनुरोध किया, जिनके साथ उन्होंने उन सभी पोलिश नागरिकों की उन दिनों की स्मृति को याद किया जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन यातना शिविरों में नरसंहार के शिकार हुए थे। संत पापा ने जोर देकर कहा, इस त्रासदी और इसके पीड़ितों जिनमें कई ख्रिस्तीय शहीद भी शामिल हैं, की सच्चाई और स्मृति के संरक्षक बने। यह प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक धर्म में शांति और मानव जीवन की गरिमा की रक्षा के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। इसके बाद संत पापा ने पूर्वी एशिया और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लाखों परिवारों को भी आशीर्वाद दिया जो आज चंद्र नव वर्ष मना रहे हैं। यह पारिवारिक रिश्तों और दोस्ती को और अधिक तीव्रता के साथ जीने का अवसर है। संत पापा ने सभागार में बैठे चीनी लोगों के एक समूह की तालियों के बीच कहा, नए साल के लिए मेरी शुभकामनाओं के साथ मेरी आशीष आप सभी तक पहुँचे। जबकि आप सभी के लिए प्रभु से शांति और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। और संत पापा फ्रांसिस ने भारत के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन CCBI की आम सभा को संबोधित करते हुए धर्माध्यक्षों से गरीबों और कमजोरों को प्राथमिकता देने और धर्म सभा के मार्ग के लाभों को लागू करने का आह्वान किया। भारत के लैटिन रीति के धर्माध्यक्ष अपनी 36वीं आम सभा के लिए ओडिशा राज्य के कटक भुवनेश्वर में एकत्रित हुए हैं। संत पापा ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे प्रार्थना करते हैं कि उनके विचार विमर्श से स्थानीय कलीसियाओं को यह समझने में सहायता मिले कि धर्म सभा के मार्ग के लाभों को सर्वोत्तम तरीके से कैसे लागू किया जाए और मिशनरी शिष्य बनने के अपने आह्वान में और अधिक विश्वासियों को प्रेरित किया जाए। जयंती वर्ष का उल्लेख करते हुए संत पापा ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारत में कलीसिया पूरे राष्ट्र के लिए आशा का प्रतीक बनी रहेगी, हमेशा गरीबों और सबसे कमजोर लोगों का स्वागत करने के लिए अपने दरवाजे खोलने की कोशिश करेगी ताकि सभी को बेहतर भविष्य की आशा हो। मिशन के लिए धर्म सभा के मार्ग को समझना विषय के तहत भारत के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन की सभा भारत में लैटिन रीति के 204 धर्माध्यक्षों को कलीसिया के मिशन पर विचार करने के लिए एक साथ लाती है। 3 दिवसीय आध्यात्मिक साधना के बाद आम सभा 4 फरवरी तक जारी रहेगी, जिसमें 10 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रशिक्षण और धर्म सभा जीवन शैली, बच्चे और परिवार, युवा, डिजिटल तकनीक और सोशल मीडिया, लोकधर्मी और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी, बुनियादी कलीसिया समुदाय, गरीबी और न्याय संगत अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी, जलवायु और न्याय, प्रवासी, शरणार्थी, आदिवासी और दलित, महिलाएं और लैंगिक न्याय, सार्वभौमिकता, अंतरधार्मिक संवाद और शांति निर्माण। उधर 3 फरवरी को वाटिकन बच्चों के अधिकारों की वकालत करने वाले पैनलिस्टों के साथ बैठक की मेजबानी करेगा, जिसमें जॉर्डन की रानी और पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोर भी शामिल होंगे। प्राथमिक विद्यालय की आयु के 64 मिलियन बच्चे कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के 3 में से 1 बच्चे को अत्यधिक खाद्य गरीबी का सामना करना पड़ता है। अकेले 2022 में 12 मिलियन लड़कियों को बाल विवाह के लिए मजबूर किया गया। संत पापा फ्रांसिस ने घोषणा की कि चुप रहने की बजाय वे एक दिन को उन लाखों बच्चों की मदद करने और उनकी रक्षा के लिए समर्पित करेंगे जो अभी भी अपने अधिकारों से वंचित हैं, अनिश्चित परिस्थितियों में रहते हैं, जिनका शोषण और दुर्व्यवहार किया जाता है और जो युद्धों के नाटकीय परिणामों को झेलते हैं। मंगलवार को वाटिकन प्रेस कार्यालय ने बच्चों के अधिकारों पर पहली बार होने वाली विश्व बैठक का कार्यक्रम जारी किया। बच्चों के अधिकारों पर विश्व बैठक 3 फरवरी को वाटिकन में आयोजित की जाएगी, जिसका विषय होगा उन्हें प्यार करें और उनकी रक्षा करें। संत पापा फ्रांसिस विभिन्न देशों के 10 बच्चों का स्वागत करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जो संत पापा के साथ एक संदेश साझा करने वाले हैं। 7 पैनल आयोजित किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक में बच्चों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक विशिष्ट विषय होगा, जिनमें शिक्षा तक पहुंच, परिवार के अधिकार, हिंसा से सुरक्षा और संसाधनों तक पहुंच शामिल है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।